ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतम् परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 19 है ना। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समुदाचारा ते पुयन्ते पिकेटका ते पुयन्ते पिकीकटा यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समदाचारा ते पुयन्ते पिकीकटा यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समदाचारा ते पुयन्ते पिकीकटा यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समदाचारा ते पुयन्ते पिकीकटा। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समदाचारा ते पुयन्ते पिकीकटा यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समदाचार ते पुयन्ते पिकीकटा यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समदाचार ते पुयन्ते पिकीकटा। और कोई पढ़िए आप लोग। माता जी आप तो नहीं पढ़ते हो। साधव समदर्शिना समदाचार ते पुयन्ते पिकीकटा। शब्दार्थ यत्र यत्र जहां जहां च भी मद्भक्ता मेरे भक्त प्रशांता अत्यंत शांत समदर्शिन सबों को समभाव से देखने वाले साधव समस्त सद्गुणों से युक्त समुदाचारा समान रूप से उदार ते वे सभी पुयन्ते पवित्र हो जाते हैं अपे भी की कटा पतित देश या उसके वासी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जब कभी और जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। दोहराइए, जब कभी और जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य, जहां भी उदात भक्त ठहरते हैं न केवल वे तथा उनके कुल अपितु समूचा देश पवित्र हो जाता है। एक लाइन का ही तात्पर्य है, जहां भी उदात भक्त ठहरते हैं न केवल वे तथा उनके कुल अपितु समूचा देश पवित्र हो जाता है। ये भगवान नृसिंह देव प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज के चिंताओं का निवारण करते हुए नृसिंह देव कहे कि जिस भी देश में परिवार में समाज में कोई भक्त आपके जैसे महान भक्त उत्पन्न होता है तो वो वसुंधरा धन्य हो जाती है, उस पृथ्वी के सौभाग्य का वर्धन हो जाता है। परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज पूरा देश जो है पवित्र हो जाता है और उसके नाम से पूरा देश विख्यात हो जाता है। जैसे अनेक पूर्ववर्ती महान राजा हुए हैं जिनके नाम से देश का नाम प्रसिद्ध हुआ है, जैसे जनक महाराज मिथिला को विदेह कहा जाता है, जनक महाराज को विदेह कहा जाता है तो उनके नाम से उनके साम्राज्य को भी विदेह राज्य कहा जाता है। उसी तरह से दुष्यंत पुत्र महाराज भरत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो अनेक ऐसे राजा महान हुए हैं जिनके नाम से देश का नाम बदल जाता है। तो प्रहलाद महाराज के चिंताओं को दूर करते हुए भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि आपके जैसे महान भक्त जिस परिवार में जन्म लिए हैं वो परिवार ही नहीं पूरा देश ही पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा जी गोमुख से निकल करके पूरे देश को पवित्र कर देती हैं, गंगा की धारा जहां जहां भी जाती है वो देश पवित्र हो जाता है, या गंगा के दर्शन से उसमें स्नान करने से गंगा का पान करने से लोग शुद्ध हो जाते हैं। दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। उसी तरह भगवान के जो भक्त हैं प्रहलाद महाराज जैसे वो गंगा जल के समान हैं। इनके दर्शन से दर्शन पवित्र कर ये तुम्हार गुण, जैसे गंगा का दर्शन करने से ही दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप मिट जाता है। विद्यापति ने लिखा है गंगा जी के महिमा में कि गंगा के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाता है और गंगा का जल पान करने से दर्शन मज्जन पान, जैसे हम लोग चरणामृत पीते हैं तो गंगा भगवान के श्री चरणों से निकलकर आती हैं। इसलिए गंगा का जल जो है चरणामृत है, भगवान के चरण से गंगा जी आती हैं। भगवान के चरण कमलों को अभिषिक्त करके गंगा जी भूधर पर आती हैं तो इस धरा को पवित्र कर देती हैं। इसलिए भारतवर्ष में गंगा जमुना जहां पवित्र नदियां बहती हैं, जिससे देश का पहचान होता है, हमारे देश की पहचान है गंगा और जमुना नदी से। उसी तरह ऐसे महान भक्त जब जिस परिवार में आते हैं तो उस परिवार का पहचान जो है आइडेंटिफिकेशन बदल जाता है, वो परिवार जो है शुद्ध हो जाता है। भले ही कितना भी गर्हित हो, भले ही कितना वो अंधकार में हो, उसके विगत लोग कितना भी पाप किए हों, लेकिन उसके आने से वो सब कई पीढ़ी, यहाँ त्रिसप्त भी भगवान नरसिंह देव कहते हैं त्रिसप्त भी पिता पुत्र पितृ भी सहते न घर, तीन सत मैंने सात्री के 21 पीढ़ी जो है उसके पितृ पितर लोग तर जाते हैं, ते अनघ वो पाप रहित हो जाते हैं। अघ मैंने पाप होता है, अनघ मैंने पाप से रहित हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज के संदर्भ में भगवान नरसिंह देव खुद अपने मुख से की प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे आकाश में अनेक तारे होते हैं लेकिन चंद्रमा के आने से अंधेरा भाग जाता है, उसी तरह कुल में अगर कोई गुणवान भक्त पुत्र जन्म ले लेता है तो उस कुल में भले ही कितने भी अनपढ़ गंवार या दोष से संपन्न लोग जन्म लिए हों, लेकिन वो सबका सौभाग्य बढ़ जाता है। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि एक चंद्र तमोहंति नक्षत्र किम प्रयोजनम, एकवान गुणवान पुत्रो सतैरपि किम करिष्यति। एक अगर गुणवान पुत्र हो तो सहस्र पुत्र की क्या जरूरत है। जैसे एक चंद्रमा जो है अंधकार को दूर कर देता है, एक चंद्र तमोहंती नक्षत्र किम प्रयोजनम, आकाश में लाखों तारे टिमटिमाते हैं लेकिन चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। उसी तरह एको अपि गुणवान पुत्रो सतैरपि किम करिष्यति। एक अगर कोई भक्त हो गुणवान हो तो सब कुल को जो है कुल का भूषण हो जाता है, कुल भूषण, और पुयंते वो सबको पवित्र कर देता है। पुयंते अपि कीकटा, कीकट एक देश है, जैसे मगध है, काशी है, कुछ ऐसे देश हैं, मत्स्य देश हैं, कुरु जंगल प्रदेश हैं, तो कीकट जो है बहुत अपवित्र देश माना जाता है। ऐसे अपवित्र देश को भी वो पवित्र कर देता है। पुयंते ते अपि कीकटा, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित क्यों न हो पवित्र हो जाता है। जैसे मगध देश है, मगध को जहां का राजा जरासंध था तो मगध देश को बहुत अपवित्र माना जाता है। लोग वहां के रहने वाले मरने के लिए काशी में जाते हैं, काशी में मरने के लिए लोग जाते हैं, काशी में मरना अच्छा माना जाता है। गुजरात में कहावत है, खास करके सूरत में हम गए थे तो वहां के लोग कहते हैं कि जेवण सूरत सूरत जेवण और काशी मरण। सूरत जो है जेवण माने खाने के लिए प्रसिद्ध है, वहां खाने के बहुत सारे आइटम हैं। सूरत जेवण और काशी मरण, काशी में मरना जो है अच्छा अच्छा माना जाता है। काशी में जो मरता है तो मुक्त हो जाता है, वहां काशी में जो कोई भी मरता है तो शिव जी उसके कान में महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसको मुक्ति हो जाता है। महामंत्र जही जपत महेशु आ काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में वो मुक्ति के लिए उपदेश करते हैं महामंत्र का। महामंत्र जही जपत महेशु, शिव जी हमेशा महामंत्र जपते हैं। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हूँ जाही निरंतर गावे, शेष गणेश महेश ये सब लोग महामंत्र जपते हैं। तो विशेषकर काशी में काशी मरण के लिए प्रसिद्ध है। और व्यक्ति जिस स्थान में जिस दशा में मरता है तो उसका उसे पहचान होता है। श्री प्रभुपाद जी एक श्लोक के टीका में कहते हैं कि ठाकुर चिन्ह चरणे और मानुष चिन्ह मरणे, भगवान की पहचान उनके चरण चिन्ह से होती है। ठाकुर चिन्ह चरणे और मानुष चिन्ह मरणे, मनुष्य का पहचान जो है मृत्यु के समय होती है। वो किस अवस्था में किस जगह पर कैसे मरता है तो उसका पता चलता है। मानुष चिन्ह मरणे तो मरने के लिए लोग पवित्र स्थान में जाते हैं, तो जिसका बहुत पुण्य होता है वो मरता है। नहीं तो एक कहावत है कि जीवन भर रहा काशी अब मरना हुआ तो मगध के बासी। एक व्यक्ति जीवन भर काशी में निवास किया था, मुखी काशी में मरूंगा लेकिन मरने के समय वो मगध में आ गया बहुत लोग वृंदावन में निवास करते हैं कि हम वहां मरेंगे, ये मरना होता है तो दिल्ली हॉस्पिटल में आकर मर जाते हैं, या मरने के लिए बंबई में आ जाते हैं। तो मरना भी बहुत पुण्य होता है तब कोई धाम में मरता है या भगवान का स्मरण करके मरता है। यहाँ पर भगवान नरसिंह कहते हैं कि प्रहलाद को आप चिंता मत करो, मां सुचह क्यों चिंता करते हो, त्रिसप्त भी पिता पुत पितृ भी सहते अनक, तुम सात वर्तमान में और सात बीते हुए और सात आने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सात जो व्यतीत हो चुका है, जो सात पीढ़ी बीत चुकी है और सात जो वर्तमान में चलेगी और इसके बाद भी सात जो भविष्य में आएगी सब मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा भी तुम्हारा जहां जहां भी जिस परिवार में जन्म हुआ है, जिस देश में जिस परिवार में जन्म लिए हो पहले भी पूर्व काल में भी, वो भी मुक्त हो जाएंगे, वो भी पवित्र हो जाएंगे। तो जैसे मलयगिरी पर्वत में चंदन जो है मलयगिरी पर्वत की शोभा को बढ़ा देता है, मलयाचल से जो भी हवा आती है, मलयाचल की जब हवा बहती है तो बहुत शीतल और सुगंध होती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो दक्षिण से हवा आती है मलयाचल की वो बहुत शुद्ध मानी जाती है। तो मलयाचल में जैसे चंदन जो है अन्य वृक्षों को भी सुगंधित कर देता है, चंदन के संपर्क में जो भी वृक्ष आता है वो भी सुगंधित हो जाता है, उसमें भी चंदन जैसा खुशबू आता है। तो एक गुणवान कोई जन्म ले लेता है कहीं भी किसी देश में परिवार में तो उसके संसर्ग से सब मुक्त हो जाते हैं। पुयन्ते पिकीकटा साधव समुदाचारा, फिर भगवान वैसे भक्त का और कुछ विशेषण बता रहे हैं। यत्र यत्र च मद भक्ता, जहां कहीं भी मेरे ऐसे भक्त होंगे। प्रशांता समदर्शिना प्रशांता, प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत, जो प्रहलाद महाराज प्रशांत हैं, जो अनेक बाधाओं में भी विचलित नहीं हुए, अनेक संकट से भी वो कभी विचलित नहीं हुए, जो प्रशांत, एक शांत कहने से भी काम चल सकता है, लेकिन यहां प्रशांत, प्रशांत मतलब जो बहुत प्रगाढ़ रूप से, जो किसी भी परिस्थिति में जो कभी विचलित न हो, उसका शांति भंग कभी न हो, चाहे विपत्ति का पहाड़ भी गिर जाए तो भी वो विचलित नहीं होता है। वाह वो नहीं करता है, ये कितना भी बहुत खराब समाचार भी सुन ले, जैसे समाचार लोग सुनते हैं रेडियो में या मोबाइल में, घर से का समाचार आता है तो कोई बुरी समाचार अगर आती है तो लोग विचलित हो जाते हैं, या कोई फोन में गाली दे देता है तो हमारा शांति भंग हो जाता है। कोई फोन में कुछ व्यंग बोल दे तो शांति भंग हो जाता है, लेकिन प्रहलाद महाराज इतना प्रशांत थे कि हिरण्यकश्यपु जो उनको आग में भी डाल दिया, पहाड़ से भी फेंक दिया, समुद्र के प्रचंड लहरों में भी डाल दिया बांध करके, इतना नहीं, किसी को जैसे किसी को मारना होता है तो लोग हाथ पांव बांध करके और पत्थर बांध करके पहाड़ नदी में डाल देते हैं या कुएं में, तो प्रहलाद महाराज को बड़े बड़े चट्टानों में बांध करके हाथ पांव में और समुद्र में फेंक दिया था, या पहाड़ पर से, पहाड़ की ऊंच चोटी से फेंक दिया था, बड़े बड़े विशाल हाथियों से रौंदवा दिया था, बड़े विषैले सर्प जहरों सर्पीले जहरीले सर्पों से कटवा दिया था, फिर भी विचलित नहीं होते थे, बिल्कुल शांत है। बड़े बड़े नाग जिनके शरीर में लिपट कर काट रहे थे, जैसे यहाँ पर कोई कह दे सांप तो सब लोग भाग जाएंगे, या गांव में अंधेरी रात हो, सभा हो, कोई कह दे सांप तो शब्द सुनते लोग भाग जाते हैं, शांति भंग हो जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज बड़े बड़े नागों के बीच में, नाग भगवान का स्मरण में रहते थे, चारों तरफ बड़े बड़े भयंकर नाग दंश मारते थे, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होते, प्रशांत। आग में भी होलिका उनको लेकर आग में बैठ गई, होलिका उनकी बुआ थी, उसको बहुत बड़ा वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि आग में भी उसका शरीर जो है फायर प्रूफ था, जैसे वाटर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, तो उसका शरीर जो है फायर प्रूफ था, आग प्रभावित नहीं करता था, वो आग में भी खेलती थी, आग में भी निवास करती थी, आग ही उसका घर था, तो प्रहलाद महाराज को आग में लेकर के चली गई, लेकिन प्रहलाद महाराज के भक्ति के प्रभाव से वो जलकर खाक हो गई होलिका, इसलिए होलिका उत्सव मनाया जाता है। जो होलिका उत्सव है, ये होलिका का दहन किया जाता है कि प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त को होलिका जो है जलाने के लिए प्रयास के लिए वो जल गई, तो प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त के यादगार में आज भी होली उत्सव मनाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है। तो प्रहलाद महाराज भगवान के स्मरण में हमेशा रहते थे, हमेशा स्मरण करते थे। और जो भगवान के स्मरण में रहता है तो बाकी भगवान का चक्र उसकी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं कि हमारे जो भक्त हैं उसकी रक्षा सुदर्शन चक्र करता है। भक्त को अपनी चिंता नहीं होती है। प्रहलाद महाराज अपनी कभी चिंता नहीं किए, बल्कि दूसरे की चिंता किए। अंत में नरसिंह देव कहे कि आप वर मांगिए, तो कहे कि मुझे कोई चिंता नहीं है। सोचे ततो विमुख से तथी इंद्रियार्थ माया सुखा भरमुद बहतो विमूढ़। मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं है। नैवे दुजे पर दुरत्य वही वही तरण्य, नैवे दुजे पर दुरत्य वही तरण्य, जो मुझे बैतरणी से पार होने का भी भय नहीं है, चिंता नहीं है। जैसे लोग मरते हैं तो बैतरणी नदी जो है, जो भौतिक जगत के पार और आध्यात्मिक जगत के दोनों के बीच में एक नदी है, बैतरणी नदी, जिसमें खून पस हड्डी बड़े बड़े सर्प बाज पक्षी रहते हैं, जिसमें असी पत्र जैसे कमल पत्र जैसे धारदार उसमें हथियार रहते हैं, सुई जैसे नुकीले कील होते हैं। तो जो पापी होते हैं उस नदी में जाते हैं, बैतरणी पार करना होता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो अपने लिए कोई चिंता नहीं। कि मुझे चिंता है कि जो आपसे विमुख हैं, जो माया सुख में आपको भूल करके इतने दुखी हैं। सोचे ततो विमुख चेतसी इंद्रियार्थ माया सुखाए भरमुद बहतो विमूढ़। मैं ऐसे लोगों के लिए सोच करता हूँ जो आपसे विमुख हैं, जो आपके प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है, आपसे विकर्षित हैं, जिन जो उनकी इंद्रियां आपके नाम रूप गुण रस से विकर्षित है, विकर्षतिमा वितृप्ता है। जिह्वा कथो, उनकी जिह्वा जो है केवल खाने में या संसारी वर्ता में रहती है। जिह्वा कथो चित विकर्षतिमा वितृप्ता, जिह्वा जो है कभी तृप्त नहीं होती है। जीभ को कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ खिलाइए, फिर चार घंटे के बाद फिर जो है अतृप्त हो जाती है, अतृप्त। जीवा हमेशा अतृप्त रहती है। शिश्न जो जननेन्द्रिय है, अनेक स्त्रियों का संग करने के बाद भी अतृप्त रहती है। शिश्नई कबूतर, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आंख जो है रूप की ओर भागती है, शब्द श्रवणेन्द्रिय जो है शब्द की ओर भागती है, नाक जो है सुगंध की तरफ भागती है, जननेन्द्रिय काम वासना की ओर भागती है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां अपने अपने तरफ खींचती हैं। तो इस भौतिक संसार में बद्ध जीव की स्थिति वैसे हो गई है जैसे किसी व्यक्ति की बहुत स्त्रियां हैं, बहवा सपत्न, बहुत पत्नी वाला पति। तो एक स्त्री इधर खींचती है, एक इधर खींचती है, उसकी ऐसी स्थिति। बहवा सपत्न युगे पतिम लुलंती, लुलंती शब्द मतलब जैसे लोल, लोल से लुलंती होता है। उसकी इंद्रियां, हर इंद्रियां लोलुप है विषय सुख के लिए। जीवा है, घ्राण है, आंख है, शब्देन्द्रिय है, रसेन्द्रिय है और कर्म इंद्रियां हैं, काम करने के लिए पैर जो है, चलने के लिए पैर जो है, बड़े बड़े शहरों का दिशाटन करने के लिए या कुछ सुंदर चीज देखने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति कोई उत्सव में जाने के लिए, तो पैर हमेशा गतिमान करने के लिए, कोई स्थान परिवर्तन करने के लिए जाना चाहता है, हाथ कुछ करना चाहता है, सारी इंद्रियां जो है जीव को अपनी ओर खींच करके उस तरह बना दिए जैसे बहवा सपत्न, किसी की बहुत स्त्री है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इनका उद्धार करिए। मैं जिस किसी भी अवस्था में जहां भी रहूंगा मुझे कोई चिंता नहीं है। नैवे दुजे पर दुरत भवितरण्य तदबीर जगायन महामृत मग्न चित्त। तो साधव समदर्शिन, नरसिंहदेव कहते हैं कि जो भगवान के ऐसे नरसिंहदेव उनके गुणों का वर्णन करते हैं, समदर्शिन प्रशांता साधव समदाचारा। समदर्शिन, समदर्शी का अर्थ होता है, चाणक पंडित कहते हैं कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मसर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। यहाँ समदर्शी ना मतलब जो सब में भगवान को देखता है, चर अचर अंडज पिंडज स्थावर जड़ जंगम सब में भगवान को देखता है, या सभी को भगवान में देखता है, समदर्शी है। हम सभी भगवान के शरीर में बैठे हैं, सारे प्राणी जो है भगवान के विराट शरीर में बैठे हैं। हम लोग, ये मंदिर है, पृथ्वी है, समुद्र है, पहाड़ है, सब भगवान के विराट शरीर में है। अर्जुन भगवान के विराट शरीर में अपने आप को भी देख रहे थे। हम भगवान से बाहर नहीं हैं, भगवान के शरीर में है, विराट शरीर में, या सब में भगवान है, जो हर प्राणियों में भगवान को देखता है, या सभी को भगवान में देखता है। हम सभी भगवान में हैं और हम सब में भगवान हैं। इसको समदर्शी कहा जाता है, समदर्शिना। तो गीता में समदर्शी के लिए भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। जो जिसकी दृष्टि सम हो गई है, वो किसी को उसके बाह्य शरीर को नहीं देखता है कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, ये हमारा खाद्य पदार्थ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गा मुर्गी जो पशु हैं उनको हम खा सकते हैं, कुछ लोग तर्क देते हैं कि इनमें आत्मा नहीं है, पशुओं में आत्मा नहीं है। कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो मानते हैं कि मनुष्यों में केवल आत्मा है। बाकी और प्राणी में आत्मा नहीं है। तो इसको निरीश्वरवाद कहा गया है। और जो ईश्वरवाद, जो आत्मा के विज्ञान को जानता है, वो सब में आत्मा को देखता है, वो हर प्राणी में आत्मा को देखता है और आत्मा को परमात्मा में देखता है और परमात्मा को, परमात्मा से सारा जगत जो है उद्भासित होता है, प्रकाशित होता है, उत्पन्न होता है। ते ऐसी जिसकी दृष्टि है उसको समदर्शिना। फिर साधव, साधव का अर्थ होता है जो हर परिस्थिति में अपने को साध लेता है, जो साधन से, भजन से जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, भक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसको साधु कहते हैं, साधव। यह भगवान कपिल कहते हैं कि साधु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, साधु का पहचान क्या है। तो भगवान कपिल कहते हैं तिक्षव कारुणिक सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। ठीक उसी का यह श्लोक जो है, इस श्लोक में वही बात कहा गया तितिक्षव प्रशांत रहता है, तितिक्षव मन बहुत अत्यंत सहनशील, चेतन महाप्रभु कहते हैं पेड़ जैसा सहनशील, तरो रिव सहिष्णुना, कहीं कहीं तरो रपी कहा गया है, पेड़ से भी अधिक सहनशील, तरो रिव पेड़ जैसा, तरो रिव सहिष्णुना या तरो रपी। तो एक बार राघवेंद्र महाराज इस पर कह रहे थे कि हम तरो रिव पेड़ जैसा सहनशील तो हो ही नहीं सकते हैं, पेड़ से अधिक कहाँ हो सकता है। तरो रपी जो है ये पाठ भेद है, वास्तव में तरो रिव सहिष्णुना ये होता है पेड़ जैसा सहनशील, पेड़ जैसा होना यही बहुत कठिन है, पेड़ से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए पाठ है तरो रिव सहिष्णुना। तो यहाँ साधव का यही मतलब है, तितिक्षव कारुणिक जो सब कुछ सहन करके भी दूसरे के प्रति दया रखता हो। पेड़ जो है सब कुछ सहन करता है, गर्मी को भी सहन करता है, लेकिन उसके नीचे जो भी जाता है उसको शीतलता देता है, पेड़ हीट को गर्मी को सहन करता है लेकिन दूसरे को शीतलता देता है, चंदन को घिसा जाता है लेकिन अपने घिस करके भी शीतलता देता है, अगरबत्ती जो है अगरू जो है जल करके भी दूसरे को सुगंध देता है, ईख जो है गन्ना जो है अपने को अपने शरीर को पूरा पिसा करके भी, गन्ने को पूरा ग्राइंड कर दिया जाता है फिर भी दूसरे को रस देता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हर परिस्थिति को साध करके दूसरे को शांति देता है, शीतलता प्रदान करता है, वो साधव तितिक्षव कारुणिक, सब कुछ सहन करके हर परिस्थिति को विपत्ति को फिर भी करुणा वो नहीं त्यागता है, कोई उसको काटता है फिर भी वो उसके प्रति करुणा जागृत करता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाए उनके प्रति भी वो दया भाव दिखाए, क्राइस्ट ईशु को क्राइस्ट में लटका दिया गया था लेकिन फिर भी जो उनको सूली पर चढ़ाए थे उनके प्रति भी उनकी दया भाव करुणा थी, इसीलिए तितिक्षव कारुणिक वो सब सहन कर लिए फिर भी उन लोगों के प्रति उनकी गलत भावना नहीं आई। जैसे पेड़ को काटिए जलाइए पेड़ को तोड़ दीजिए पेड़ में आग लगा दीजिए फिर भी पेड़ जो है उसका प्रतिकार नहीं करता है, पेड़ को पत्थर मारिए फिर भी वो पत्थर नहीं मारता है, पेड़ का उदाहरण दिया गया है चेतन महाप्रभु तरो रिव, पेड़ को साधु कहा गया है कि गर्मी को सर्दी को सह लेता है लेकिन उसके जो तले जो पेड़ के आश्रित होते हैं उनको सुख देता है, पेड़ को पत्थर मारिए फिर भी वो फल देता है, इतते वे पाहन हने उतते वे फल दे, पेड़ को कोई पत्थर मारे तो भी वो फल देता है। एक नीति शास्त्र में कहा गया कि पिबंती नद्य स्वमेव नाभ स्वयं न खादंती फलानि वृक्ष नादंती सस्यम खलुबारी बाहा परोपकाराय सताम विभूतय, वृक्ष को भी सत विभूति कहा गया साधु कहा गया है क्योंकि वो दूसरे के लिए फलता फूलता है, साधु दूसरे के लिए जीवित होता है, फूल फलाई पर हेते वो दूसरे के लिए फलता है फूलता है छाया देता है। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी इतना विषम परिस्थिति में वृद्धावस्था में पूरे विश्व में प्रचार करके विश्व समाज को एक सुंदर घर प्रदान किया है। उनके विषय में कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व में कैसे गृह का निर्माण किया है जिसमें सभी जाति के सभी देश के सभी संप्रदाय के बिना नस्ल भेद के भाषा भेद के लोग शांति से रह सकते हैं। तो दूसरे के लिए किए साथ बड़े परमार्थी होते हैं। आप बद्ध जीव जो है स्वार्थी होते हैं। सामान्य लोग इस संसार में स्वार्थी होते हैं और जो साधव समुदाचारा जो सबके प्रति समान रूप से उदार है सबके प्रति जिसके हृदय में दया है कंपैशन है समुदाचारा सम उदार समान रूप से उदारता है किसी के प्रति वो ये नहीं कि कंजूसी नहीं करता है कि इसको थोड़ा कम देना है इसको ज्यादा देना नहीं समुदाचारा समान रूप से सबके प्रति वो कंजूसी नहीं करता है या कोई आता है तो ऐसा नहीं कि इसको रखना है इसको नहीं रखना है ये बहुत पढ़ा लिखा है इसको हम ज्वाइन कराएंगे कम पैसे में नहीं समुदाचारा साधव समुदाचारा जो सबके प्रति समान उदार होते हैं सबके प्रति दया जो है समान रूप से बरसती है जैसे वर्षा जो है समान रूप से हर जगह वर्षा होता है जैसे सूर्य का प्रकाश जो है हर जगह जाता है चंडाल के घर में भी ब्राह्मण के घर में भी मंदिर के प्रांगण में भी और कसाई के घर में भी सूर्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता है। सूर्य की किरणें जो है हर जगह गिरती है चाहे टॉयलेट हो चाहे यूरिन हो चाहे गंगा जल हो चाहे गटर का पानी हो सूर्य समान रूप से प्रकाश देते हैं चंडाल के घर में भी ब्राह्मण के घर में भी। उसी तरह समुदाचारा बहुत सुंदर व्याख्या इस पर आचार्यों ने किया है कि साधु जो है ऐसा उदार होता है कि सबके प्रति वो शुभाक्षी होता है सबकी शुभेक्षणा सबके कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रहलाद महाराज कहे कि सभी सुखी हों सर्वे भवन्तु सुखिनः हम सुखी या हमारा परिवार सुखी रहे हमारा केवल जाति के लोग सुखी हो जाएं बाकी सब भाड़ में जाए ऐसा नहीं। हमारा वैदिक शास्त्र कहता है और आचार्य लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सभी सुखी हों सभी निरोग हों सभी का मंगल हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी मंगल में दिखें सब कोई दुखी न हो। तो ऐसा प्रहलाद महाराज का ये उदार भाव है इसलिए साधव समुदाचारा ते पुयन्ते पिकीकट ऐसे भक्त जहां जिस समाज में जिस देश में भी अपवित्र देश में भी बहुत अशुद्ध देश में भी अपवित्र देश में भी या बहुत पापी कुल में भी अगर जन्म लेते हैं तो शुद्ध हो जाता है पुयन्ते कितना भी असुर कुल में पतित कुल में ऐसे भक्त का अगर जन्म होता है तो शुद्ध हो जाते हैं। तो नृसिंहदेव बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज का स्तुति कर रहे हैं। ये प्रहलाद भगवान जो है भक्त की स्तुति करते हैं भक्त भगवान की स्तुति करता है और कभी कभी भगवान भक्त की प्रशंसा करते हैं इसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि प्रहलाद तुम्हारे जैसे भक्त यत्र यत्र च मद भक्ता ऐसे महान भक्त जहां कहीं भी जाएंगे वो देश पवित्र हो जाता है। तुम अपने पिताजी के लिए क्यों सोच करते हो वो तो तुम्हारे कई पीढ़ी शुद्ध हो गई है, तुम्हारा और भी कहीं जन्म हुआ होगा वो भी शुद्ध हो गए होंगे। जैसे ध्रुव महाराज अपने माँ के लिए चिंता कर रहे थे, जब विमान में जा रहे थे तो चिंता की कि माँ हमारी कैसे होगी, कहाँ, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदार के प्रति, समाज के प्रति आसक्ति रहती है। प्रहलाद महाराज अपने पिता के प्रति ये वेदना प्रकट किए कि हमारे पिताजी आपको गाली दिए, आपके प्रति हमेशा अपराध किए उनका, आप उनको क्षमा कर दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए। उसी तरह ध्रुव महाराज चिंता किए तो भगवान के जो पार्षद से कहे कि आपकी माँ जो है आपके आगे विमान में जा रही है तो माँ जो है गुरु का काम की थी, माँ ने ही कहा था कि तुम भजन करो, तो जो कोई भक्ति में लगा देता है किसी को तो उसको भी उसके लिए पहले विमान आता है। जो प्रचारक है जो दूसरे को भक्ति में लगा देता है और भक्त भक्ति में दृढ़ हो जाता है तो उसको भी फल मिलता है। जैसे गंगा जल मेहंदी को बांटने वाला, पीसने वाला, लगाने वाला, या गंगा जल का स्पर्श करने वाला, छिड़कने वाला पवित्र हो जाता है। गंगा को जल कोई छिड़क रहा है तो जिस पर गिरता है वो भी, और जो छिड़क रहा है, या मेहंदी जो पीसने वाला है या बांटने वाला है, हाथ में तीनों का हाथ लग जाता है। बांट नवारे को लगे जो मेहंदी का रंग। उसी तरह से भक्ति में कोई कोई लोग भक्ति में दूसरे को लगाते हैं, माला नहीं जप करते हैं फिर भी दूसरे को कहते हैं आप माला जप कीजिए, आप 16 माला जप करना चाहिए। हम 16 माला जप करें या न करें लेकिन दूसरे को कहते हैं कि 16 माला जप करना ही चाहिए, तो कभी कभी लोग करने लगते हैं तो वो लगाने वाले को भी लाभ मिलता है, जो प्रचारक है उसको भी लाभ मिलता है। इसलिए प्रचारक के लिए इंश्योरेंस है कि माँ सुनीति ने ध्रुव महाराज को भक्ति मार्ग में लगा दिया था तो उसके लिए पहले विमान आ गया था। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।